ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवतम चौथा स्कंद नौवा अध्याय ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 33। दैवीं मायां उपाश्रित्य प्रसुप्तः इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीये अपि असति भ्रात्रे भ्रातृव्य हृत् रुजा। दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीये प्यसति भ्रात्रे भ्रातृव्यहृद्रुजा। अनुवाद। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तात्पर्य, भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अनेकानेक बातों की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होती हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई सूचना न होने के कारण हम कल्पना से अनेक मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक उहापोह है। वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्माएं भगवान की संताने अथवा उनकी तटस्था शक्ति के आनुषंगिक फल हैं। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। यह भी एक अन्य प्रकार का स्वप्न दर्शन है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान हैं, वे एक विद्वान ब्राह्मण हाथी कुत्ते तथा चांडाल में भेद नहीं करते। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य ज्ञान पाता है कि वह देह पांच तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से भी मनुष्य और देवता के शरीर की बनावट एक जैसी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम भी आध्यात्मिक स्पुलिंग हैं, ईश्वर के भिन्नांश हैं। चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से, हम सभी एक हैं, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा, दैवीं मायाम उपाश्रित्य। इस मोह का कारण माया की संगति थी। अनुवाद को दोहराइएगा। हरे कृष्ण, दैवीं मायाम उपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक् तप्ये द्वितीयप्यसति भ्रातृ भ्रातृव्य हृद्रुजा। ध्रुव महाराज शोक कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप कर रहे हैं? दैवी मायाम उपाश्रित्य प्रसुप्त, कि मैं माया के गोद में सोया हुआ था। प्रसुप्त मतलब सुप्त अवस्था में था, प्रकृष्ट रूपेण सुप्त, अति घोर निद्रा में मैं माया के गोद में सो रहा था, बिल्कुल अज्ञान की अवस्था में था, और इसलिए भिन्न दृक्। भिन्न दृक् मतलब मेरी दृष्टि द्वैत थी, मैं द्वैत दृष्टि से देख रहा था। भिन्न दृक् मतलब भेदभाव करना, पृथक भावम। जब हम भेद करते हैं, भेदभाव करते हैं कि ये अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये भला है, ये बुरा है, तो ये भिन्न दृक् है। इन द्वंद्वों में जब हम पड़ जाते हैं तो हम मोहजाल में पड़ जाते हैं। और ये क्यों होता है? ये द्वैत दृष्टि, ये भिन्न दृक् पृथक भावम, ये क्यों जागृत होता है? क्योंकि हम अज्ञान में हैं। अज्ञान में होने का मतलब है कि हम माया के गोदी में सोए हुए हैं। मस्त माया की गोदी में सोए होने के कारण हम ये नहीं समझ सकते कि वास्तव में जो हम जिस व्यक्ति को हम हमारा शत्रु समझते हैं, वास्तव में हमारा शत्रु वो नहीं है। संसार के लोग उन लोगों को शत्रु समझते हैं जो वास्तव में शत्रु नहीं है, और उन लोगों को मित्र समझते हैं जो वास्तव में उनका बुरा करते हैं। संत जो हैं, हम देखते हैं कि प्राचीन काल से, अनादि काल से संतों को गलत समझा गया है समाज में। जैसे बड़े बड़े महाराजा भी जब गृह त्याग कर वन में गए, इधर उधर भ्रमण करने लगे, जैसे महाराज ऋषभदेव, तो उनको लोगों की बहुत निंदा सुननी पड़ी। कहा जाता है कि महाराज ऋषभदेव जब घूमते थे, वो एक अवधूत के वेश में होकर घूमते थे और गली गली बाजारों में भी घूमते थे, तो लोग उनको कोसते थे, उनके ऊपर थूकते थे। तो महाराज ऋषभदेव इससे विचलित नहीं हुए, वो उनकी महानता है। लेकिन समाज के जो लोग हैं, उनकी मन की भावना क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, हम इससे समझ सकते हैं कि ऐसे बड़े संत महाराज ऋषभदेव, जो वास्तव में भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, इतने बड़े राज्य को त्याग कर भगवान के शरण में गए, लेकिन संसार के लोग उनको समझ नहीं पाए। तो हम देखते हैं कि पुराने जमाने से एक इतिहास है भौतिक संसार का, कि भौतिक लोग जो हैं भगवान के भक्तों की महानता को समझ नहीं पाते हैं, उनको साधारण समझते हैं। प्रभुपाद जी यीशु क्राइस्ट का भी उदाहरण देते थे कि लोग उनको समझ नहीं पाए, इसलिए उनको सूली पे चढ़ा दिया। हरिदास ठाकुर को भी वहां काजी ने जो नवाब ने समझा नहीं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े भक्तों को भी लोग समझते नहीं है। प्रभुपाद जी को भी कई लोग समझे नहीं, कृष्ण को समझे नहीं, तो भक्तों की बात तो दूर है। जब कृष्ण स्वयं आए थे तो कितने लोग ऐसे थे जो उनको ठीक से समझे नहीं। आजकल आज भी एक समाज है, एक वर्ग है, जो समझती है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है, उसने कई बुरे कर्म किए, उसने पाप किए, और इन पापों की वजह से कृष्ण अभी नरक में है। है ना प्रकाश प्रभु, है ना ऐसा वर्ग जो सोचता है? अभी तक लोग सोचते हैं कि कृष्ण साधारण है। साधारण व्यक्ति ही नहीं, वो नरक में है और इसके ऊपर वाद भी करने के लिए सामने खड़े बैठते हैं, आ बैठते हैं कि आप कृष्ण की पूजा करते हो लेकिन कृष्ण तो नरक में है। तो इसके लिए जवाब क्या देना चाहिए हमें? जवाब यही देना चाहिए कि नरक में गए भी हैं तो आप जैसों को वहां से मुक्त करने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को लोग नहीं समझ सकते तो यह स्वाभाविक है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भी गलत समझेंगे, और ऐसा हुआ है। तो भगवान के भक्त जैसे महाराज भरत भी थे, बताया जाता है शास्त्रों में कि जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया तो अपने शत्रुओं के राज्य में भी वो घूमते फिरते थे। देखिए, जब राजा होता है उसके लिए शत्रु का सामना करना केवल युद्ध में होता है और उसका सामना नहीं करता और उसके राज्य में नहीं जाता। अगर शत्रु के राज्य में जाता है कोई राजा, अपनी सेना लेकर ही जाएगा, बस सेना लेकर जाएगा, उसको हराएगा, उसके राज को कब्जे में कर लेगा, या तो हार के वो मर जाएगा रणभूमि पर। अगर ऐसी दूसरी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें राजा शत्रु के राज में चले जाता था, लेकिन केवल इसमें एक बात है जब ये नियम का पालन नहीं होता था। कब है? जब राजा घर राज को त्याग कर जब वो साधु बनता था, सन्यासी बन जाता था, उस वक्त वो कोई भेदभाव नहीं करता था। तो भरत महाराज ने भी अपने पिता की तरह भेदभाव नहीं किया, शत्रु मित्र को एक समान देखा, नहीं तो वो शत्रु के राज्य में क्यों घूमते फिरते? उनको क्या जगह की कमी थी घूमने फिरने के लिए? पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, इतनी जमीन है घूमने के लिए कि एक आदमी घूमता फिरता रहे जीवन भर, घूमे फिर भी पृथ्वी को पार नहीं कर सकता है। तो भरत महाराज जहां हृदय ले जा रहा था वहां पे वो घूमते फिरते थे, ये नहीं सोचा कि ये मेरे शत्रु का राज्य है। जैसे हमें भी सोचना पड़ता है आजकल हम कारगिल पार होकर जाएंगे क्या? भगवान के भक्त भी हो, हम 10 बार सोचेंगे नहीं जाना वहां, हमारा क्या होगा, वो लोग हमको पहचानेंगे, क्या करेंगे। लेकिन भरत महाराज ने ऐसे नहीं सोचा, बिल्कुल खुले हृदय से घूमते फिरते थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में उन्होंने भगवान को रखा था, उनको कोई भी चीज की चिंता नहीं थी। भवत विदा भगवतस तीर्थक भूतोस कौन सा है वो श्लोक, तीर्थ भूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वंत तीर्थानी स्वांत स्थेन गदाभृतः। महाराज युधिष्ठिर महाराज विदुर को, विदुर जी को बताते हैं, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करके आए वो कहने लगे भवत विदा भगवतः तीर्थ भूता स्वयं विभो, कि आप जैसे जो भगवान के महान भक्त होते हैं, आप हृदय में भगवान को रखते हैं, भगवान आपके हृदय में विराजमान है, इसलिए आप चलते फिरते तीर्थ स्थान है। तीर्थ भूता स्वयं विभो, हे विभो हे प्रभु, आप स्वयं तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भगवान है। स्व अंतस्थेन गदाभृतः, गदाभृत मतलब कौन? गदा धारण करने वाले, वो है विष्णु। विष्णु आपके हृदय में विराजमान है, इसलिए तीर्थ भूता स्वयं विभो, इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान बन गए हैं। तीर्थ स्थान क्या है? किस स्थान को हम तीर्थ स्थान कहते हैं? जिस स्थान में भगवान उपस्थित हैं, भगवान की कोई विशेष अर्चा विग्रह मूर्ति उपस्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों ने आके कोई लीला की हो, ऐसे जगह को हम तीर्थ स्थान कहते हैं, जिसमें जाकर हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो सके, जहां भगवान की उपस्थिति के लक्षण या चिन्ह हर जगह दिखाई पड़ते हैं, जहां पर जाके जिनका स्पर्श करके हमारी भक्ति में प्रगति होती है, भक्ति में हमें प्रेरणा मिलती है, यह है तीर्थ स्थान। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं विदुर जी को कि आप तो स्वयं तीर्थ स्थान है क्योंकि आपके हृदय में भगवान है और हृदय में स्थित होकर भगवान ने आपके हृदय आपको भक्ति में प्रेरित किया है, इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान है और तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी। इतना ही नहीं कि आप केवल तीर्थ स्थान है कि जहां भी आप जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भ्रमण करते हैं, उस स्थान को आप तीर्थ स्थान बना देते हैं। जब आपके चरण कमल उस स्थान पर पड़ जाते हैं तो वो जगह भी तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ये है शुद्ध भक्त की एक शक्ति, क्योंकि शुद्ध भक्त वहां खुद जब जाते हैं तो भगवान को ले जाते हैं, जहां भक्त चले जाते हैं वहां भगवान भी पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि भगवान भी उनके हृदय में रहते हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कह रहे हैं कि आप तो खुद तीर्थ स्थान है ही, लेकिन जहां भी आप जाते हैं सब जगह को तीर्थ स्थान बना लेते हैं। उसी प्रकार से ये भरत महाराज की भी भावना थी। भरत महाराज जब घूम रहे थे तो भगवान को हृदय में लेकर घूम रहे थे, और इसीलिए जहां भी जाते थे वो सब देखते ये सब भगवान की शक्ति है, ये सब भगवान का है, ये ना तो मेरे मित्र का है ना तो मेरे शत्रु का है, ये केवल भगवान का है, इसलिए भेदभाव नहीं करते थे वो, और इसीलिए तो इतने उच्चे स्तर पर वो पहुंच गए। हाँ, आखिर में एक हिरण से आसक्त होकर उनका पतन हो गया, वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे थे, जो बहुत उच्च स्तर है भक्ति में। इस प्रकार से भरत महाराज ने कोई भेदभाव नहीं किया। भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शनः, कि जो वास्तव में पंडित होता है वो समदर्शन देखता है, उसकी दृष्टि एक जैसी होती है, समान दृष्टि से सारे लोगों को, प्राणियों को देखता है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन सारे प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मणे, ब्राह्मण को, शुनि मतलब कुत्ता, शुनि चैव श्वपाक, श्वपाच, श्वपच मतलब कुत्ते को खाने वाला, गवा मतलब एक गाय, हस्ती मतलब हाथी, इन सब प्राणियों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, कुत्ते को खाने वाला चांडाल हो, हाथी हो, जो भी हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ये है ज्ञान के लक्षण। प्रहलाद ने भी यही बात कही जब शंड और अमरक उनके जो अध्यापक थे गुरुकुल में, जब उन्होंने पूछा कि अरे प्रहलाद, तुमने पिताजी के पास में जाकर ये बताया कि विष्णु का संदेश तुम ले आए, ये कैसे हो गया, विष्णु तो हमारे शत्रु हैं और आपके पिता कहते हैं कि हमारे शत्रु के जासूस अभी हमारे गुरुकुल में, हमारे राज्य में आके बैठे हैं और हमारे बीच कोई जासूस है, तो बताओ कौन है हमारे शत्रु हमारे बीच में, हमारे शत्रुओं की बात कैसे कहते हो तुम। तो प्रहलाद ने क्या जवाब दिया, प्रहलाद ने जवाब दिया कि मैं उन भगवान की प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं, जिनकी माया शक्ति के प्रभाव में आकर आप दोनों सोच रहे हैं कि कोई हमारा शत्रु है कोई हमारा मित्र है। प्रहलाद ने प्रवचन दिया उनको, उनको उपदेश किया कि देखो वास्तव में कोई हमारा शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है, हमारे मित्र वास्तव में केवल भगवान है और शत्रु कोई नहीं है। यह समझना आसान है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है, आसान तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन कोई हमारा मित्र नहीं है ये कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। वो कहते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांड का भोक्ता हूं, भोक्ताराम, जो भी यज्ञ तपस्या आप करते हो मेरे संतुष्टि के लिए करना चाहिए, भोक्ता एकमात्र मैं ही हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर, मैं महेश्वर हूं, और सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूता नाम मतलब सारे प्राणियों का सुहृत मैं हूं। सुहृत मतलब शुभचिंतक, उनका मैं वास्तव में मित्र हूं। और जो इस बात को जानता है, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर भगवान ही केवल शुभचिंतक हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम दूसरों का हित चाहें। इसलिए देखा जाता है कि केवल वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भगवान के शुद्ध, भगवान के जो शक्ति, भगवान के गुणों, भगवान के कृपा को प्रदर्शित करने के लिए एक निमित्त बन जाते हैं, केवल ऐसे शुद्ध भक्त ही हमारे शुभचिंतक बन सकते हैं। नहीं तो संसार के लोग हमारे शुभचिंतक नहीं बन सकते, क्योंकि उनको वो जानते ही नहीं है कि हमारा हित किस चीज में है। अगर आप हमारे हित को नहीं जानेंगे तो हमारे शुभचिंतक कैसे बन सकते हैं, हमारी सहायता आप कैसे कर सकते हैं? तो संसार के जो लोग हैं वो हित अहित क्या है इसको नहीं जानते हैं, इसलिए कैसे हमारे शुभचिंतक हो सकते हैं? तो वास्तव में अगर हमारे शुभचिंतक नहीं होते तो हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं? तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि कोई हमारा शत्रु भी नहीं है, कोई हमारा मित्र भी नहीं है, केवल श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त जो है वो हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे परम पिता कृष्ण के चरण कमलों में ले जाते हैं और वो हमें निद्रा से जागृत कराते हैं, अज्ञान की निद्रा से या फिर भागवत क्लास की निद्रा से भी हमें जागृत कराते हैं। इसलिए हमारे पास में जो सोए हुए होते हैं उनको भी जगाना चाहिए ताकि हम उनके मित्र बन जाते हैं। मित्र मतलब जो हमें वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में जो हमें आने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो सोया हुआ था, अभी मैं जग गया हूं, आपकी कृपा से मैं जग गया हूं, अभी मुझे पता चल गया कि मैं द्वैत दृष्टि से देख रहा था, लेकिन जब मुझे पूरी तरह से ज्ञान हो चुका है तो मैं समझता हूं कि यहां देखिए, द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तो माया की गोद में सोकर अज्ञान अवस्था में आकर ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि मेरा जो भाई है जिसका नाम है उत्तम, ये मेरा जो है ये मेरी स्पर्धा में है, प्रतिद्वंद्वी है ये मेरा, और इसीलिए हम ये जो कुर्सी है, राज सिंहासन है, हम में से कोई एक बैठ सकता है, और मैं पिताजी के गोद में बैठा था लेकिन मेरी विमाता ने मुझे गोदी से हटा दिया, इसका मतलब कि उनके पुत्र उत्तम को वो स्थान मिल गया। हम कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए एक कुर्सी के लिए हम दो हैं, इसलिए ये मेरा शत्रु है, और शत्रु को हमें नीचा करना चाहिए, शत्रु को बदला लेना चाहिए। ये भावना लेकर मैं वन में तपस्या करने गया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना मूर्ख था। मेरा भाई तो मेरा शत्रु नहीं है। आजकल यही भावना को हम देखते हैं सारे संसार में, और खास करके इस समय ये भावना ज्यादा तीव्र तरह से प्रतीत नजर आती है, दिखाई पड़ती है। क्यों? चुनाव का समय आ रहा है ना, तो अभी देखते हैं कि मित्र शत्रु कैसे बदलते हैं लोग। देखिए दिन ब दिन, एक दिन में जो मित्र है वो शत्रु बन जाता है, जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है। कैसे लोग पलटी मारते हैं आजकल, देखना है, बड़े अचरज की बात। हर एक दिन सुबह अखबारों में नए कुछ पढ़ने आता है, नए मित्र बन गए, नए शत्रु बन गए। देखिए अज्ञान, घोर अंधकार, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए मित्र शत्रु बदलते रहते हैं। मानो जैसे हम रोज आके कपड़े बदलते हैं, वैसे मित्र शत्रु बदलते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं मालूम कि उनका हित किस में है। इसलिए अपने हित को केवल एक भौतिक दृष्टि से देखते हैं, प्रेयस श्रेयस नहीं देखते हैं, वास्तविक हित हमारा किस में है। इसलिए प्रहलाद भी बताते हैं, नते स्वार्थ कतिम विष्णुम दुराशया ये बहिर्थम आने, कहते हैं इनका सच्चा स्वार्थ क्या है, स्व अर्थ किस में है इनको नहीं मालूम। इनका सच्चा स्वार्थ किस में है? विष्णु। अंतिम गति हमारी है विष्णु में। लेकिन संसार की चीजों को, मंत्री का पद, एमएलए, एमपी, इसका पद उनको बहुत आकर्षक लगता है, इसलिए इसके पीछे विष्णु गति को भूलकर अधोगति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में अधोगति ही है, अधोगच्छन्ति तामसा, क्योंकि सारे राज्य का पाप जो है एक छठा भाग उनको अपने सर पे लेना पड़ेगा, और ये छठा भाग पाप लेकर कहां जाएंगे? वो स्वर्ग में तो नहीं जा सकते। अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति ही प्राप्त होगी उनको। इसलिए ये ज्ञान, गीता और भागवत का ज्ञान, ये संदेश हमें सब जगह फैलाना चाहिए, और हमारे भक्तों के समाज में, हमारे भक्त के समाज में भी इस बात को हमें बहुत ही ध्यान से, हमें हृदय में इसको ऐसे संभाल के रखना चाहिए जैसे हम घर में सोना पैसे को संभाल के रखते हैं। ये जो धर्म के तत्व होते हैं ना, ज्ञान के जो अनमोल रत्न होते हैं, उनको हमारे हृदय में ऐसे ही संभाल के रखना है जैसे घर में हम धन को संभाल के रखते हैं। ये हमारे असली काम में आएंगे। घर का धन चले जाएगा एक न एक दिन, या तो हम चले जाएंगे वहां से, जब हमारा देहांत होगा तो हम धन को छोड़ के जाएंगे, या तो धन हमें छोड़ के जाएगा, दोनों में से एक। लेकिन हम दोनों का अंतर हो जाएगा, चाहे धन हमें छोड़ जाए या हम धन को छोड़ जाए, लेकिन ये धन जो है हमारे हृदय में हमेशा रहेगा, और यही धन जो है वास्तव में हमारे सुख का कारण बन जाएगा। इसलिए ये धर्म के, ज्ञान के जो रत्न हैं, इनको हृदय में हमेशा रखने चाहिए। कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं। भक्तों के समाज में भी हमें देखना चाहिए, कोई हमसे आगे तेजी से प्रगति कर रहा है, ये मेरा शत्रु बन गया? नहीं, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है, तो ऐसे अच्छे अच्छे भक्तों का संग मुझे मिलेगा, तो ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि इनके संग में रहने से मैं भी भक्ति में रह सकता हूं, मुझे भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। इस प्रकार से सारे समाज में सभी को हमें मित्र समझना चाहिए, खास करके जो हमारे भक्तों के समाज में है। सबका हित ही सोचना चाहिए, ये जानते हुए कि कृष्ण भक्ति ही हमारी वास्तविक हित है। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज के अनुभव से हम भी सीख सकते हैं, हमें भी उसी अनुभव से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज ने अनुभव कर लिया है, हमारे लिए अनुभव कर लिया है, अभी उनके अनुभव से हमें केवल सीखना है बस। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है दूसरों के अनुभव से सीख लेता है, खुद अनुभव करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्रुव महाराज के अनुभव से भी हमें यही सीखना चाहिए कि कैसे हमें द्वैत दृष्टि को त्यागना है और भगवान की भक्ति में स्थित होकर केवल दूसरों को और अपने आप को कृष्ण भक्ति में कैसे स्थित करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वो देखता है कि ये भी जीव है, वो भी जीव है, जो कुत्ते का मांस खाता है या जो शुद्ध शाकाहारी है, दोनों जीवात्मा है, दोनों अपने अपने कर्म को भुगत रहे हैं। एक अपनी इच्छा से, इच्छा के सदुपयोग करके उसको एक प्रकार का शरीर मिला है, एक प्रकार की प्रवृत्ति का अनुशीलन उसने करते हुए उसे एक प्रकार का स्वभाव मिला है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसने अलग प्रकार से अलग गुणों का अनुशीलन किया है, अलग प्रवृत्ति का अनुशीलन किया है, इसलिए उसे अलग प्रकार का शरीर मिला है। अगर व्यक्ति कुत्ते का मांस खा रहा है तो केवल अज्ञान की वजह से खा रहा है, वो बुरा नहीं है, वो पाप बुरा है, उसकी अज्ञान ये बुरी चीज है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल ने कहा है, हेट द सिन नॉट द सिनर, कि पाप से द्वेष करो पापी से नहीं, क्योंकि पापी पाप क्यों करता है? अज्ञान की वजह से। अगर उसे ज्ञान मिल जाएगा पाप करना बंद कर देगा, जैसे वाल्मीकि ऋषि ने किया था। पहले रत्नाकर थे, बड़े डाकू थे, जब उनको पता चला नारद मुनि की कृपा से कि सत्य क्या है, तो अपने पाप करना छोड़ दिया। तो ठीक उसी प्रकार से शुद्ध भक्त जब दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि सब जीव हैं, फर्क इतना ही है कि इसने भगवान की बात को मान ली है और भगवान के शरण में आया है, पाप को त्याग रहा है। और दूसरा व्यक्ति है अज्ञानी है, उसके ऊपर कृपा करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए, कृपा करके उसे भी पाप से मुक्त करना चाहिए, सही मार्ग में लाना चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्त हमेशा सबको एक अनुकूल दृष्टि से देखते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, क्योंकि ये कृष्ण का गुण है ये। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मोसमो पतित पावो नहीं आ रहा, कि आप, मैं सबसे पतित आदमी हूं, आपकी कृपा के योग्य और कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, मुझसे इतना योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इतना गिरा हूं, तो मैं सबसे ज्यादा आपकी कृपा का अधिकारी हूं, योग्य हूं। तो ये भक्त की भावना भी होती है कि जितने पापी लोग हैं उतने ज्यादा कृपा करते हैं उनके ऊपर लोग, शुद्ध भक्त। इसलिए प्रभुपाद जी कहां गए, ऐसे जगह गए, अमेरिका में गए, लोग इतने पापी थे, उनको पुण्य क्या है ये पता ही नहीं था, भक्ति क्या है ये कोई उनको आइडिया भी नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने जाकर उनके ऊपर कृपा की। वो हर प्रकार के पाप करते थे, ऐसे कोई पाप उन्होंने छोड़ा नहीं था। अगर प्रभुपाद कहते कि ये पापी है, मुझसे संग नहीं, उनको उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो आज ये संस्था नहीं होती, शायद आज हम भक्ति में नहीं होते। तो शुद्ध भक्त के गुण होते हैं कि हमेशा सबकी भलाई चाहते हैं। तो एक दृष्टि से देखना है, कैसे, आध्यात्मिक दृष्टि से, फिर भी व्यवहार में वो अंतर देखते हैं। जैसे शेर का भी, शेर के अंदर भी आत्मा होती है और एक भक्त के अंदर भी आत्मा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि शेर को जाकर हम आलिंगन करेंगे, दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि होगी हमारी, लेकिन व्यवहार हम संभल के रहेंगे। उसी प्रकार से हम जब भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम भी भेदभाव करते हैं। कैसे भेदभाव करते हैं? भक्तों का संग ज्यादा करते हैं, अभक्तों का संग कम से कम करते हैं। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम जानते हैं कि आत्मा सभी है, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति कमजोर है। अगर हम अभक्तों का संग करेंगे तो हम उनकी तरह बन जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए हमारे स्तर में हमें भेदभाव करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान हमेशा रहना चाहिए कि सब एक समान है। ठीक है, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूत, मैं सब सारे प्राणियों को एक समान दृष्टि से देख चाहूं। नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ना किसी से द्वेष करता हूं, ना कोई मेरा ज्यादा प्रिय है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उसका हूं और वो मेरा हो जाता है। तो इसीलिए विशेष प्रेम भगवान का भक्तों के ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि भक्त वैसे चाहता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्, जैसे जीव मेरे साथ व्यवहार करना चाहता है, मैं भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ में करता हूं। कोई मुझे भूल जाना चाहता है, मेरा शत्रु बनना चाहता है, तो मैं तो प्रेम करता ही हूं, लेकिन ऐसा मेरा उसके साथ व्यवहार रहता है कि मानो मैं भी उसका शत्रु हूं। वास्तव में मैं तो प्रेम करता हूं उससे, भगवान कहते हैं। जैसे पौंड्रक ने कृष्ण के, विष्णु के चार भुजाएं लक्षण लेकर आए कृष्ण से युद्ध करने के लिए, तो शत्रु का सामना किया, शत्रु का भाव लेकर आए कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने भी शत्रु का भावना लिया, हालांकि अंदर से कृष्ण तो उनको भलाई चाहते थे। शिशुपाल ने भी शत्रु की भावना लेकर कृष्ण का सामना किया, तो कृष्ण ने भी एक शत्रु की भावना लेकर सुदर्शन चक्र चलाया। कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर सुदर्शन चक्र नहीं चलाते हैं, चलाते हैं नहीं चलाते। तो वो शत्रु बनना चाहे तो कृष्ण भी शत्रु बने, लेकिन जब कृष्ण किसी के शत्रु बनते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति का भला करते हैं, ये फर्क होता है। जब हम किसी के शत्रु बन जाते हैं तो उसका बुरा करने का प्रयास करते हैं, जब लेकिन कृष्ण किसी के शत्रु बन के आते हैं तो उनका भला करके ही छोड़ते हैं उनको। इसलिए शिशुपाल के गर्दन उन्होंने काट दी सुदर्शन चक्र से, तो क्या हुआ, मुक्त हो गए शिशुपाल। सारे आश्चर्यचकित रह गए, सब भरी सभा में सब लोग देख रहे थे कि शिशुपाल के हृदय से आत्मा आई और कृष्ण में आ गए, लीन हो गए। तो इस प्रकार से भगवान की बाहरी दृष्टि से हो सकता है कि वो किसी के शत्रु बने, किसी के मित्र बने, लेकिन हृदय में वो सबसे प्रेम करते हैं और सबका भला करते हैं हर एक कार्य से, चाहे कोई उनका शत्रु बनने का इच्छुक रहे या कोई उनके भक्त बनना चाहे। लेकिन फिर भी ये स्वाभाविक है कि जो बच्चा अपने माता पिता के शरण में ज्यादा जाता है, जो ज्यादा निस्सहाय एक भावना प्रकट करता है माता पिता के सामने, माता पिता का प्रेम उसके प्रति विशेष होगा। अगर कोई माता पिता के चार बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा सबसे छोटा है, निस्सहाय है, बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर है माता पिता के ऊपर, तो स्वाभाविक है कि हालांकि माता पिता सारे चारों बच्चों को प्रेम करते हैं, फिर भी वो छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से निस्सहाय भावना से निर्भर है उनके ऊपर। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी सब जीवों को प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त जो है अपने आप को भगवान के हवाले कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है कि मैं आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूं, अपने आप में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको मेरा देखभाल करना है। वैसे कृष्ण सभी का देखभाल करते हैं, लेकिन भक्त इस भावना से भगवान के चरणों में जाता है, इसलिए भगवान के हृदय में भक्त के प्रति विशेष प्रेम होता है। यही है मतलब इस श्लोक का। दो तीन दिन पहले किया गया था यही प्रश्न। वास्तव में खुद ब खुद उनका उद्धार तो हो गया, और जब ध्रुव महाराज जा रहे थे वैकुंठ वापस, तो उनकी माता भी तो गई, सुनीति आगे गई, और जहां तक सुरुचि का प्रश्न था, खुद ब खुद उनको पश्चाताप हुआ बाद में, और ध्रुव महाराज के संबंध होने के कारण उनका भी उद्धार हो गया। भगवान श्री कृष्ण भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त से जो भी संबंधित होता है उन सब के ऊपर कृपा कर देते हैं। इसलिए कोई भक्त के संबंध में भी हम आ जाएं, तो उसमें भी हमारी भलाई है। तो माता सुरुचि को भी ऑटोमेटिक खुद ब खुद उनको भी लाभ मिल ही गया। तो ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त सभी का भलाई चाहते हैं। पहले द्वेष भावना थी ध्रुव महाराज के हृदय में, लेकिन जब वो शुद्ध भक्त बने तो सारी द्वेष भावना खत्म हो गई, और सबके प्रति वो प्रेम की भावना से देखने लगे। जैसे मां की बात तो दूर, अपने भाई के बारे में भी सोच रहे हैं, अभी यहां पश्चाताप कर रहे हैं कि अज्ञान में आकर मैं अपने भाई को शत्रु मान रहा था, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि ये मेरे शत्रु नहीं है। उसी प्रकार से अपने मां को, विमाता को भी वो शत्रु मान रहा था, लेकिन कहता है मैं अज्ञानी था, अज्ञान की वजह से उनको शत्रु मान रहा था, लेकिन वास्तव मेरे शत्रु नहीं है वो। देखिए तो कितने सारे लोग हैं प्रत्यक्ष प्रार्थना करने के लिए, कितने के लिए हम करेंगे, करने जाएं तो कितने लोगों के लिए करने हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज में एक जनरल भी सबको कर दिया कि मैं सबके लिए इसका क्षमा याचना, शोचे ततो विमुख चेत सा इंद्रियार्थ माया भरम उद्वतो विमूढ़ान, कि मैं सारे उन प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं, वो प्रार्थना क्षमा याचना कर रहा हूं जो मूर्ख है, जो इंद्रिय सुख चाहते हैं भगवान से विमुख हो गए हैं। शोचे ततो विमुख चेतसा, जो विमुख चेतसा हैं, जिनकी चेतना भगवान से विमुख हो गई है, इंद्रियार्थ, जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भगवान से विमुख हो गए, उद्वहतो भारम विमूढ़ान, जो बहुत भारी बोझ लेकर मूढ़ है, ऐसे लोगों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, इनके लिए मैं शोक करता हूं। तो प्रहलाद ने जनरल प्रार्थना भी कर दी सबके लिए, अपने माता अपने पिता के लिए तो किया ही क्योंकि वो विशेष पापी थे, लेकिन अपने विमाता के प्रति भी उनकी अच्छी भावना थी। उनकी विमाता तो खैर हिरण्यकश्यप जैसे पापी तो नहीं थी, थोड़े द्वेषी थे बस, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे असुर तो नहीं थी। तो उनको मालूम था कि एक बार भक्त बन गया और इनको पश्चाताप हो रहा है। हिरण्यकश्यप को कभी पश्चाताप नहीं हुआ। अंतिम क्षण तक हिरण्यकश्यप के हृदय में द्वेष था, लेकिन माता सुरुचि के हृदय में पश्चाताप हो गया। तो इसलिए भगवान की कृपा ऑटोमेटिक आ गई, तो ध्रुव महाराज को अलग से उनके लिए क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कोई प्रश्न? कोई अंतर नहीं है, आत्मा सब एक समान है, शरीर अलग अलग है। शरीर मतलब मन बुद्धि सब अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे हम सड़क पे देखेंगे, कोई साइकिल चलाता है, कोई मारुति गाड़ी चलाता है, कोई बड़ी लॉरी ट्रक चलाता है ना, कोई सुमो गाड़ी चलाता है, तो सारे अंदर के मनुष्य सब मनुष्य हैं, सारे इस देश के नागरिक हैं, और कानून के दृष्टि से सब एक समान है ना, सब मानव है, सब मनुष्य है। लेकिन अभी अलग अलग प्रकार के गाड़ियों में बैठे हैं, कोई साइकिल तो कोई सुमो तो कोई मारुति तो कोई ट्रक लॉरी या तो फिर कोई हवाई जहाज चला रहा है, लेकिन मनुष्य अंदर के एक समान। उसी प्रकार के शरीर सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी को मनुष्य शरीर शुद्ध भक्त है, कोई कोई चांडाल है, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, गुण अलग अलग हो सकते हैं। ये गुण अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार का अलग अलग प्रकार से संग किया है। तीन गुणों का संग, सत्व रजस तमस, उनका संग अलग अलग प्रकार से किया है। चांडाल ने तमोगुण का ज्यादा संग किया है, जो शुद्ध भक्त है उसने सत्वगुण का संग करके सत्वगुण के परे पहुंच गया है, और जो बीच में है वो रजोगुण का संग कर रहे हैं, इसलिए पैसा धन आदिवादी इसके पीछे भागदौड़ करते हैं। तो जैसे हम गुणों का संग करते हैं वैसे हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, और उसी प्रवृत्ति के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, अलग हमारे हैबिट्स हो जाते हैं, आदत हो जाती है, हमारे रहन सहन का ढंग हो जाता है। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये बताते इच्छा द्वेष ये दो चीज होते हैं, इच्छा करना किसी चीज के लिए प्राप्त करने के लिए, या द्वेष की भावना जब आती होती है तो क्या होता है, द्वंद्व मोहेन भारत, ये मोह आ जाता है। किस प्रकार का मोह? द्वंद्वों का मोह, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मित्र है ये शत्रु है, ये भावना आ जाती है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, फिर सारे प्राणी सम्मोह में पड़ जाते हैं, फिर सर्गे यान्ति, सर्गे मतलब ये सर्ग में, इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, आते हैं। तो जो वो मूल इच्छा थी, इच्छा या द्वेष था, उस हिसाब से उनको संग करने का मौका मिलेगा। जब पहली बार जीव आता है भौतिक संसार में तो कहा जाता है कि उसे मनुष्य शरीर मिलता है, और किस प्रकार का मनुष्य शरीर मिलता है, जैसे उसकी मूल इच्छा थी या द्वेष, इच्छा द्वेष, उस हिसाब से उसे शरीर मिलता है। और प्रिय शरीर को प्राप्त करके जिस हिसाब से अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग या सदुपयोग करता है, जैसे संग वो करता है अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, उस हिसाब से उसे अगला शरीर मिलेगा और फिर अटक जाता है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जैर्गुणैर कारणम गुणसंगोस्य सद असद योनि जन्मसु, भोग की भावना। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जैर्गुणैर, क्योंकि वो भोग करने की भावना होती है, भुंगते, भुंगते मतलब भोग करने की भावना। जब जीव प्रकृति का भोग करना चाहता है तो क्या होता है, सत असत योनि जन्मसु, उसे सत असत योनियों में जन्म लेना पड़ता है। प्रकृति गुण संगस्य, प्रकृति के तीन गुणों का संग करने से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, कोई सत्वगुण में भोग करना चाहता है, कोई रजोगुण में भोग करना चाहता है, कोई तमोगुण में भोग करना चाहता है, लेकिन सभी भोग करते हैं। तो जैसे जैसे वो भोग करने की उनकी प्रवृत्ति है, वैसे वैसे उनको सत असत योनि की प्राप्ति होगी, अलग अलग प्रकार के शरीर उनको मिलेंगे। स्वेच्छा, इसको कहते हैं स्वेच्छा। जैसे आदमी अभी अच्छा भला रहता है, जानता है कि सिगरेट पीना बुरा है, फिर भी सिगरेट उठा के पी लेता है, जानता है, ज्ञान है, फिर भी सिगरेट उठाते, जान सिगरेट पैकेट पे भी लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए बुरा है।